बंदूक और निशाना। आस्था को इस बात का अंदेशा होने लगा था कि शायद उसके पति की याददाश्त वापस आ गई है। अब आगे, फिलहाल अब नानी माँ, रौनक, रश्मि और मारिया, जो कि सब के सब वसुंधरा और वीर के आने पर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, अब अरमान की बात सुनने के बाद वो सब पूरी तरह से शांत हो चुके थे और वो चुपचाप खड़े हुए थे। वहीं अभिमान जी के चेहरे पर एक अलग ही तरह का संतोष नज़र आ रहा था। फिलहाल अरमान ने इससे ज़्यादा कुछ और कहना ज़रूरी नहीं समझा। अब देर न करते हुए उसने आस्था का हाथ थामा और उसे सीधे स्टडी रूम में ले आया था, और बाकी सभी लोग भी धीरे धीरे अरमान पीछे आकर खड़े हो गए थे। अरमान ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए अपने दिमाग को शांत किया और सभी लोगों को बेमन से देखा। अब सभी की आंखों में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अरमान से सवाल कर सके। तभी आस्था ने बारी बारी से सभी लोगों की ओर उलझन भरी नज़रों से देखा। जब कोई भी अरमान से सवाल करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, तब आस्था ने मन ही मन आह भरी और एक कदम आगे बढ़कर अरमान को आवाज़ लगाई, मिस्टर सिंघानिया। जैसे ही आस्था ने ये शब्द कहा, वैसे ही अरमान ने तुरंत उसे पलट कर देखा। उसकी लाल आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उसके अंदर कितना तेज गुस्सा भरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे उस गुस्से के तूफान में सब कुछ तबाह हो जाएगा। जैसे ही आस्था की नज़र अरमान के खतरनाक एक्सप्रेशन पर पड़ी, तो एक पल के लिए आस्था घबरा गई और अगले ही पल उसने जल्दी से खुद के इमोशंस को संभाला, फिर शांत आवाज़ में पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप वहाँ क्या कर रहे थे और आपको कैसे पता चला कि हम इस तरह का रॉकी से मिलने का कोई प्लान बना रहे हैं? और वसुंधरा आंटी, वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं और आप करना क्या चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया? जैसे ही आस्था ने अटकती हुई आवाज़ में यह सवाल पूछा, तो जवाब में अरमान का चेहरा हल्का सा बदला। उसने गहरी सांस ली और सब लोगों की ओर तीखी नज़रों से देखा, खासकर सुमित, आकाश, ध्रुव और आहान की ओर। जैसे ही उन चारों को अपने ऊपर अरमान की तपती हुई नज़र महसूस हुई, तो उन्होंने निराश होकर नज़रें झुका ली थीं। तभी अरमान अविनाश और बाकी सबकी ओर देखते हुए कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे मानना पड़ेगा, तुम चारों ने पूरा प्लान भी बना लिया और अरमान सिंघानिया की बीवी को भी उस प्लान में शामिल कर लिया। क्या तुम लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? जब मुझे तुम्हारे इस प्लान के बारे में पता चलेगा, तो मैं तुम सबके साथ क्या करूंगा? ये कहते हुए अरमान की आवाज़ में जमा देने वाली ठंडक थी। उसके चेहरे के रुके भाव बदलने का नाम नहीं ले रहे थे। अरमान की डरावनी सी आवाज़ सुनकर आहान जल्दी से हकलाते हुए बोला, भाई, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से आपको कुछ याद भी नहीं था, इसलिए हम सब आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम ही किसी न किसी तरीके से आस्था भाभी को डाक विला भेजकर एंटीडोट चुराएंगे और खुद उस ब्लैक डेविल किंग से मुकाबला करेंगे। आहान के आखिरी शब्द सुनकर अरमान का शरीर क्रोध से भर उठा था और अचानक अरमान जोर जोर से हंसने लगता है। अरमान को इस तरह बेपरवाह अंदाज में हंसते हुए देखकर अब तो सबकी सांसें पूरी तरह से उखड़ने लगी थीं। सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि अरमान का हंसना और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। तभी अरमान अचानक उन पर तिरछी नजर डालते हुए एरोगेंट वॉइस में बोला, ओ रियली, तुम लोग कब से इतने बड़े हो गए? तुम सबने मिलकर इतना बड़ा प्लान बना लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये कहते हुए अरमान की रोबदार आवाज में कुछ नाराजगी भी झलक रही थी। वो शब्द सबके कानों में ऐसे पड़ रहे थे जैसे अरमान कह रहा हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सच्चाई छुपाने की। तभी आकाश एकदम कोल चेहरे के साथ बोला, अरमान, हमें नहीं पता कि तुम्हें यह सारा सच कैसे पता चला, लेकिन अगर तुम सब जान ही चुके हो तो तुम्हें अब तक ये भी पता चल चुका होगा कि इन सबके पीछे आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ठीक करना चाहते थे, तुम्हारी यादें वापस लाना चाहते थे, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए था। अरमान ने अफसोस भरी सांस ली, फिर उन सबको बारी बारी से जानलेवा नजरों से देखा, फिर आकाश की ओर हाथ बढ़ाकर उसे कुछ और कहने से रोक दिया। अब तुम्हें इससे आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी और इसी वक्त तुम सब यहाँ चले से जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ बातें करनी है। ये कहते हुए अरमान की आवाज धीमी, गहरी और हल्की सी खतरनाक थी। अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से को दबा रहा हो। सिचुएशन को भांपते हुए सबने खुद के इमोशंस को संभाला, क्योंकि अरमान ने अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं दिया था जिससे ये लगे कि उसकी यादें वापस आई हैं। लेकिन अब सभी समझ चुके थे कि इस वक्त अरमान की यादें पूरी तरह वापस नहीं आई हैं। फिलहाल अविनाश ने आस्था को देखकर पलके झपकाकर आश्वासन दिया और सबसे पहले बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन अबीर जाते जाते रुका और अरमान की ओर देखकर शांत स्वर में बोला, देखो अरमान, तुम्हें आस्था पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो ब्लैक डेविल किंग के पास सिर्फ इसलिए गई थी ताकि किसी भी तरह से तुम्हारे लिए एंटीडोट लेकर आ सके, और अगर वो वहां किसी तरह फंस जाती तो हम सब उसकी मदद के लिए वहां मौजूद थे। हाँ, ये तरीका शायद थोड़ा बेवकूफी भरा था, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए जो एफर्ट्स किए हैं उसके लिए तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। अबीर और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अरमान ने तुरंत उसे रोकते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर राठौर, क्या आपको कम सुनाई देता है? आई सेड जस्ट लीव राइट नाउ। अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसे भाषण दे।
ये सुनते ही अबीर गुस्से से मुंह बनाते हुए बाहर निकल गया। अबीर ने मन ही मन सोचा कि इतना खड़ूस तो ये पहले भी नहीं था जितना अब याददाश्त जाने के बाद हो चुका है। खुद से बड़बड़ाते हुए अबीर भी बाकी सबके साथ बाहर चला गया। फिलहाल सब लोगों के जाने के बाद आस्था ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपकी यादें वापस आ गई हैं? कहीं ना कहीं आस्था का दिल यही चाहता था कि अरमान कह दे कि हाँ, उसकी खोई हुई यादें वापस आ गई हैं। वहीं अरमान आस्था के सवाल को इग्नोर करते हुए सीधे मुद्दे पर आया, आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे लिए बलिदान दोगी, मेरे लिए ब्लैक डेविल किंग के पास जाओगी? देखो, मेरी यादें भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम इस परिवार के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हो। मेरे परिवार की खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान को खतरे में डालने की? हाँ, अरमान का मन किया कि वो आस्था का दिमाग खोलकर देखें आखिर इसमें चल क्या रहा है। अरमान की रोबदार और खतरनाक आवाज सीधे आस्था के दिल पर असर कर गई और उसकी खुशी मायूसी में बदल गई। उसके दिल में जो उम्मीद थी कि शायद अरमान की यादें वापस आ गई हैं, वो अगले ही पल टूट गई। वो अपने दिल की कड़वाहट और दुख को दबाते हुए बोली, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, आपको कैसे पता चला कि मैं ब्लैक डेविल किंग के डार्क विला में जाने वाली थी? और वसुंधरा आंटी, आप वसुंधरा आंटी को कब लेकर आए? आखिर ये सब हो क्या रहा है मिस्टर सिंघानिया? आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? आस्था उलझन में थी, उसके चेहरे पर काफी परेशानी के भाव थे। अरमान ने अपनी इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली और थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में कहा, वैसे तो मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें याद है तुमने कल क्या किया था? अरमान के उलझन भरे सवाल को सुनकर आस्था हैरान रह गई थी और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या क्या मतलब?
तभी आस्था के दिमाग में धीरे धीरे कुछ बातें याद आने लगी थी। जब अभिमान जी लगातार बैठकर कोल्ड ड्रिंक पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तब आस्था उन्हें इतना परेशान सा देखकर चौंक गई थी और उनके पास जाकर बैठ गई थी। उस वक्त अभिमान जी को थोड़ी सी शराब चढ़ चुकी थी। तब आस्था ने उनसे सवाल किया था, क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? तब अभिमान जी ने नशे की हालत में आस्था से कहा था, बेटा पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं कि वो औरत किसी भरोसे के लायक नहीं है। उसने बहुत बार मेरा भरोसा तोड़ा है और मुझे धोखा भी दिया है, लेकिन जब से वो इस घर में आई थी तब मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था, और जब से वो इस घर से गई है तब से मेरा सुकून कहीं गायब सा हो गया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभिमान जी ने आस्था में ये भी बताया था कि उन्होंने अपने दिल की ये बात अपने पिता को भी बताई थी, मगर उन्होंने भी इस बात को अनसुना कर दिया। ये सब कहते हुए अभिमान जी बुझे बुझे से लग रहे थे। आस्था अभिमान जी की बातें सुनकर हैरत में थी। उसका गला सूखने लगा था, तो उसने बिना सोचे समझे अभिमान जी की ही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अपने होठों से लगा ली थी। उसके बाद उसे गहरा नशा चढ़ चुका था। उसके बाद फिर नशे की हालत में जिस वक्त अरमान उसे कमरे में लेकर आया था, तब आस्था ने अरमान के गले में बाहें डाल दी थी और उससे कहा था, आप जानते हैं आप कितने ज्यादा बुरे हैं। अब आपका प्यार हमारे लिए एकदम से ही खत्म हो गया है। पहले तो हम आपके इतना ज्यादा प्यार करने से परेशान हो जाया करते थे, लेकिन जब से आपकी यादें गई हैं तब से आपने तो हमें प्यार ही नहीं किया। आस्था नशे की हालत में अपनी दिल की बात अरमान से बोलती चली गई थी। कितना प्यार करते थे ना आप हमसे, लेकिन अब हम आपकी वो सारी बातें मिस कर रहे हैं। और आप जानते हैं, आपकी यादें वापस लाने के लिए हम उस ब्लैक डेविल किंग की गुफा में भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको पता है, हम उस राक्षस की गुफा में जाकर आपके लिए वो एंटीडोट चुरा कर लेकर आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी यादें वापस आएं। हम अपने पति को बिल्कुल ठीक कर देंगे, फिर देखना हमें हमारा थोड़ा सा खड़ूस, थोड़ा सा पोजेसिव पति फिर से वापस मिल जाएगा। आस्था लड़खड़ाती हुई आवाज में ये सारी बातें अरमान से कह चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने वसुंधरा के बारे में भी अरमान को बता दिया था कि अभिमान जी वसुंधरा को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। आस्था ने नशे की हालत में एक एक करके सारी बातों के बारे में अरमान को बता दिया और अब अरमान उसका एक एक शब्द ध्यान से सुन चुका था। फिलहाल अरमान के चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। संजना ने वसुंधरा से आस्था को जो कॉल्स करवाए थे, उसी दौरान अरमान ने वो अननोन नंबर नोटिस कर लिया था और अपने खास लोगों से आस्था के फोन की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। उस इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चल चुका था कि लास्ट टाइम वसुंधरा ने ही आस्था को कॉल किया था। अरमान को वो नंबर देखकर हैरानी हुई थी, क्योंकि ये वही नंबर था जिस नंबर से अरमान को टेक्स्ट मैसेज आया था जब आस्था की जान खतरे में थी। इसका मतलब साफ था कि उस वक्त वसुंधरा ने ही अरमान की मदद की थी, और अब वसुंधरा आस्था को मिलने के लिए बुला रही है, तो उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इसी दौरान संजना के कहने पर वसुंधरा ने एक लेटर लिखकर आस्था के नाम भिजवा दिया था। वो लेटर भी अब अरमान के हाथ लग चुका था, क्योंकि अगले दिन आस्था नशे की हालत में काफी देर तक सोती रही, इसलिए आस्था की जगह वो लेटर अरमान को मिल चुका था। उस लेटर में वसुंधरा ने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। उसने ये भी बता दिया था कि किस तरीके से संजना आस्था को मरवाने की कोशिश कर रही है और संजना ने उसके बेटे को भी अगवा कर रखा है।
अब ये सारी बातें जानने के बाद अरमान सबसे पहले संजना को पकड़ने के लिए सीधा कहीं और नहीं बल्कि संजना के मेंशन आ पहुंचा था। संजना ने जब अपनी दरवाजे पर अरमान को देखा तो एकदम से उसके होश उड़ गए थे और वो एकदम से परेशान होकर सोच रही थी कि अगर अरमान ने उसके घर पर वीर और वसुंधरा को देख लिया तो उसके खिलाफ कितने सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। संजना अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। इससे पहले वो अरमान से कुछ कह पाती, उससे पहले अरमान ने बिना देरी किए अपनी बंदूक निकालकर संजना के माथे से लगा दी थी। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे संजना को जिंदा गाड़ देगा। संजना पूरी तरह से डर गई थी। उसकी घबराहट और दिल की धड़कनें डबल डबल स्पीड से चलने लगी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। उसने घबराहट में अपनी सारी चालें अरमान को बता दी थी। इसके बाद अरमान ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के जरिए संजना को अगवा करवा दिया था और उसे अपने फार्म हाउस पर कैद कर लिया था। फिर वो वसुंधरा और वीर को लेकर सीधे सिंघानिया मेंशन आ गया था। अब जब आस्था को ये सारी बातें पता चली तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने कंफ्यूज होते हुए अरमान से पूछा, तो फिर आपने संजना के साथ क्या किया? कहाँ है संजना? अरमान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस इतना कहा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। इतना सुनकर आस्था और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और वो एकदम से ठिठक कर बोली, लेकिन आप मुझे तैयार होने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुझे कहाँ जाना है? अरमान ने उसे फिर कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया।